विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख होने का हो गया, तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही, तब ही भगवान के सन्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बात है, इस बात ये तंत्र गतम प्राप्तम जनानाम, जिनका पाप सब नष्ट हो गया वे दृढ़ प्रतूर भगवान का भजन करते हैं, और भगवान का भजन करते हैं वे पापों से रहित हो जाते हैं। अपन पापों से रहित होने पर भगवान का ही भजन करे ये नियम नहीं है, परंतु भगवान का भजन करे वे पापों से रहित हो जाए ये नियम है। इस वास्ते परमात्मा की तरफ चलने का उद्देश्य मनुष्य मात्र रख सकता है, कर सकता है, वो कैसा ही रहा हो, चाहे थोड़ा सा थोड़ा समय रहा, चाहे पापी से पापी हो, दुराचारी से दुराचारी हो, अयोग्य से अयोग्य हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा न हो, ऐसा भी परमात्मा की तरफ चलने में अधिकारी है। कारण क्या है कि जैसे संसार में अधिकार आपकी योग्यता के अनुसार मिलता है, परंतु माँ की गोदी वो अधिकार कोई योग्यता से नहीं है, वो तो माँ का होने के नाते माँ की गोदी का अधिकारी है, माँ के प्यार का अधिकारी है। ऐसे ही ये परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, परमात्मा की तरफ चलने में अधिकारी है। ये योग्यता विशेष और कम होने से कम अधिकारी ज्यादा अधिकारी ये बात नहीं है, ये बात विशेष ध्यान देने की और बहुत ही लाभ देने वाली बात है। अपने कृत्यों को लेकर के और परमात्मा से निराश न हो, हाँ संसार में पद पाने के लिए निराश हो जाए कि भाई वैसे हम योग्य नहीं है, ऊंचा पद हमें कैसे मिलेगा, ये बात ठीक है, मन परमात्मा के यहाँ मिलेगा सबको, जो चाहेगा सच्चे हृदय से तो उधर चलेगा और उसको वो प्राप्त होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसी विलक्षण बात है। तो दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सूरी मता, दैवी संपत्ति है तो देव परमात्मा को चाहते हैं, उनकी संपत्ति होती है, उनमें ये गुण आते हैं। आसुरी संपत्ति है जो प्राणों के पोषण परायण रहते हैं, उनमें ये गुण आते हैं, वो सब आसुरी संपत्ति है, और देव परमात्मा का ध्येय बनाकर चलने वालों की आसुरी संपत्ति देवी संपत्ति है। तो परमात्मा की तरफ चलते हैं उनके सबसे पहले अभयम, उनको भय नहीं होता। ये तीन श्लोकों में, ढाई श्लोकों में देवी संपत्ति के 26 गुणों का वर्णन है, तो भय रहित हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के बिना भय रहित हो नहीं सकता। किसी लोक में कहीं भी जाओ क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम भी शांति, निर्भय हो नहीं सकता, वहां से वो छूटेगा ही। सहस्र युग पर्यंत महर्य ब्रह्मा जी का विद्न हजार चतुर्युग का है, तो बड़ी से बड़ी आयु होने पर भी काल उनका भी आ जाता है, इस वास्ते वे भी अंत वाले हैं। परमात्मा है वो कालातीत है, वह काल का चक्र नहीं चलता, वो अतीत है, गुणातीत हो जाता है, जो उसको अतीत को प्राप्त हो जाता है, तो उनके अभय होता है। भय भीतर से बाहर से दो तरह का होता है, बाहर से चोर डाकू सांप आदि का भय लगता है, और एक अपने आचरण गड़बड़ी के होने से भय लगता है। जितना आचरण अशुद्ध होगा उतना उसके भय भीतर रहेगा, भीतर में भय रहेगा, और आचरण जिसका ठीक होगा वो निर्धड़क रहेगा, निस्संग रहेगा, वो हृदय उसका गिरेगा नहीं। तो अभय भगवान की तरफ चलता है तो उसका हृदय मजबूत रहता, अभय रहता है। बाहर का आने वाला भय भी उसको नहीं लगता, क्योंकि बाहर का आने वाला भय तो केवल शरीर का नाश कर सकता है, उसका खुद का क्या बिगड़ेगा, और खुद परमात्मा में लग गया तो उसका बिगड़ेगा क्या, तो उनमें अभयता रहती है। अभय सत्व संशुद्धि और सत्व नाम अंतकरण की सम्यक शुद्धि होती है। सम्यक शुद्धि उसी दिन होगी जिस दिन भगवान की तरफ वो लग गया, तो अंतकरण की अशुद्धि उसकी मिट जाती है। अभी अभी से सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो अनन्य भाग वो साधु रेव समन्तव्य, साधु मान लेना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा होता है, तो अंतकरण शुद्ध बहुत जल्दी होता है। ज्ञान योग व्यवस्थित, वो ज्ञान के लिए योग में स्थित रहता है, परमात्म तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए, उनके प्रेम के लिए ये संसार के पदार्थों के आने जाने में, मिलने न मिलने में समता रखता है, इसमें उस स्थिति रहती है परमात्मा के लिए। और दानम, वो दान करता, अपने पास में जो चीज होती है वो सात्विक दान करता है। दमस्त और इंद्रियां और मन का निग्रह करता है, इनके ऊपर अपना काबू करता है, इनके वश में नहीं होता। आज भी संपत्ति है वे तो मन और इंद्रियों के वश में होकर भोग भोगने में लगते हैं, ये उनका भोगों से उपराम और दम करता है। दानम दमस्त यज्ञ से और यज्ञ करता है, बलिवेश देव आदि जो अपना नित्य कर्म है जिसमें सदा ही भोजन बनता है, तो विश्व मात्र को बलि दे करके भोजन करते हैं। स्वाध्याय और स्वाध्याय करते हैं, वो अपने वर्ण के अनुसार यज्ञोपवीत लेना है, संध्या गायत्री आदि करना है, दूसरे भगवान के नाम का जप करना है, अथवा शास्त्रीय पठन पाठन करना है, रामायण गीता भागवत का पाठ करना है, सहस्र नाम का पाठ आदि है, ये सब स्वाध्याय हो जाता है। असली स्वाध्याय अपना अध्ययन, अपनी कैसी योग्यता है, कितने कितने अवगुण हमारे में रह गए, क्यों रह गए, इसका ख्याल करके अवगुणों को दूर करने के लिए चलते हैं, वो स्वाध्याय है। और तप जो अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए, उन कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहना, ये तप है। तप शारीरिक वाणी, शरीर के वाणी के मन के कई बताए हैं, वे भी तप है, ठीक है, परंतु जिस धर्म को पालन वो करता है, जिस साधन को वो करता है, जिस धार्मिक स्थिति में रहता है, और उस पर जो कष्ट आते हैं वे कष्ट है, प्रसन्नता पूर्वक सह जाए, तो ये सबसे बड़ा तप है। हम जान करके भूखे रह जाए, शीत घाम आदि सहे, वो सहना इतना बड़ा तप नहीं, क्योंकि हम विचार कर लेते हैं सहना है तो क्या बड़ी बात है, परंतु हम तो अपने ठीक धर्म का पालन कर रहे हैं और अचानक कष्ट आता है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ किया नहीं, हमने ऐसे पाप कर्म भी किए नहीं, और हमने अपने मर्यादा पर स्थित है, उसमें तरह तरह कष्ट आते हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो हम व्यवहार में उलझ जाएंगे, मोह में फंस जाएंगे, इस वास्ते ऐसी अवस्था में जो कष्ट आता है, मन के विपरीत परिस्थिति आती है, वो बढ़िया तप होता है। मन घृणित तप नहीं है, वो भगवत दत्त तप है। एक वैद्य औषधि करता है रोगी के लिए, पथ्यापथ्य का विचार करता है, और एक रोगी अपने मन से ही विचार करता है, आयुर्वेद तो जानता नहीं, तो उसके द्वारा तो भूल हो सकती है, परंतु सदवैद्य के हाथ में रहने वाला योगी रोगी वो उपथ्य नहीं कर सकता। ऐसे अपने मन ग्रहण तप करे, इसकी अपेक्षा भगवान का दिया तप है वो बहुत प्रसन्नता से आनंद से स्वीकार करना चाहिए कि प्रभु ने कृपा कर दी है जो मेरे को ऐसा तप दिया है। ध्यान देना, मैंने बहुत बार दृष्टांत दिया है कि जैसे किसी माता के मन में एक प्रेम उमड़े, बच्चे खेलते हुए देखा, बालकों को देखा तो मन में स्नेह उपड़ गया, तो समय उमड़ जाने से सबको एक एक लड्डू दे दो भाई, बच्चों को दे दो, मिठाई दे दो, ऐसे वो दे देगी, परंतु थप्पड़ सबको दे नहीं होगा कि उद्यमता करते हैं छोरे के एक एक थप्पड़ मार दो सबकी, ऐसा नहीं करे, थप्पड़ मारेगी अपने बालक, अपना बालक उद्यमता करता है वह कान पर क्यों रे छोरा ऐसे क्यों करता, थप्पड़ लगा देगी। तो थप्पड़ लगाने में माँ का जो अपनापन है वो लड्डू देने में अपनापन नहीं है, बच्चे समझते हैं, बच्चे समझते लड्डू देती है माँ अच्छी, थप्पड़ देगी क्या माँ हुई, परंतु माँ का अपनापन तो थप्पड़ लगा उसमें, ऐसे ठाकुर जी के शरण होने पर ठाकुर जी उनको अपना लेते हैं, ये बात कि उसके मन की न करके प्रवृत्त करते थप्पड़ लगाते चपत लगाते रहते हैं, तो भगवान अपने मन की करते हैं, इस बात को देख करके राजी होना चाहिए कि बाहर का दुख तो मामूली है, अरे भगवान ने मेरे को अपना लिया, ये कितने आनंद की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है, मेरे से कुछ सलाह नहीं लेते मेरे विधान कर देते हैं, तो मेरे पर प्रभु की कृपा विशेषता से है, इस वास्ते वो तपस्वी होता है, दुख में प्रसन्न होता है, ऐसे उनमें सरलता रहती है, सीधापन होता है। जितने भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उनके अंतकरण में कपट नहीं रहते, कपट गांठ मन में नहीं, सब सौ सरल स्वभाव। नारायण ता भगत की लगी किनारे ना, मोह कपट सर से दृढ़ भाव, निर्मल जन सन जन ऐसा निर्मल मन जन मोह सोमोह भावा। निर्मल मन वाला जन मेरे को अच्छा लगता है, मोह कपट छल छिद्र भावा, कपट छल छिद्र मेरे को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते क्यों कपट करता है, संसार तो तेरे को मानेगा जैसे मानेगा, कपट से कोई विशेष मान ले नहीं मानेगा, मान ले तो लाभ नहीं होगा, और मैं तो भाई सरलता से मानता हूँ अपना, इस वास्ते तू क्यों कपट करे। इस वास्ते भगवान से सरल होकर नान्यास विहार ये सत्यम बदामी जो भगवान अखिलांतरात्मा आप भीतर विराजमान है, सच्ची कहता हूँ आपके चरणों की निर्भय भक्ति दीजिए महाराज, और मैं चाहता ही नहीं हूँ काम आदि दोष रहित हूँ, गुरु मानस ये भी दूर कर दो और आपकी भक्ति दो, तो ऐसे भगवान की भक्ति मानता है और कोई इच्छा नहीं है तो वो निर्मल होता है, तो उसे सरलता बहुत होती है व्यवहार में वाणी में हृदय में सरलता रहती। अहिंसा हिंसा नहीं करता, शरीर से वाणी से मन से किसी की हिंसा हत्या नहीं करता, दुख नहीं देता, सत्य पालन करता है, जैसा अपने सुना है देखा है समझा है शास्त्र में पढ़ा है अपने निर्णय किया है उसके अनुसार स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके न कमर न ज्यादा ऐसे प्रिय शब्दों में कह देना होना सत्य है, ऐसे सत्य वाचन करते स्वाभाविक ही, क्योंकि कोई डर नहीं कोई स्वार्थ नहीं, भय लगता हो तो असत्य बोल दे, स्वार्थ कोई सिद्ध करता हो तो असत्य बोल दे, उनके स्वार्थ रहता नहीं भय नहीं, अभय पहले ही कह दी। अक्रोध है क्रोध नहीं करते, किसी ने कोई नुकसान भी कर दिया तो उस पर क्रोध भी करते ही नहीं, क्रोध क्या करे, नुकसान तो होने वाला ही होता है, न होने वाला कोई नुकसान कर दे उसके हाथ की बात नहीं है, वो तो हमारे होने वाला ही है, निमित्त बन गया कोई बेचारा नुकसान करने में तो उस पर दया करनी चाहिए, क्रोध क्या करे, उसने अपना खुद का नुकसान किया, दूसरे का अहित करने वाला होता है वो स्वयं का अहित पहले करता है पीछे दूसरे का अहित होता है, वो दूसरे का अहित होने में तो संदेह हो नहीं भी हो पर खुद के अहित होने में तो निस्संदेह हो ही गया अहित, क्योंकि उसके अहंता में अवगुण आ गया, अरे जिसका अहित किया है उसके ऊपर से नुकसान कर दिया, अपन के भीतर की अहंता उसकी बिगड़ी नहीं है, और अहित करने वाले की भीतर से अहंता बिगड़ गई तो बड़ा भारी नुकसान हुआ है, जिसका अहित कर दिया उसके घाटे की पूर्ति हो जाएगी, परंतु अहित करने वाले के घाटे की पूर्ति बहुत मुश्किल है, कभी अहंता मिटे निर्मो निरहंकार शांति मधि गति तब कहीं उसकी शुद्धि होगी, उससे पहला शुद्धि नहीं होगी, भीतर अहंता में पाप भर गया वहाँ अवगुण भर गया है, बहुत नुकसान हो गया है, चोरी करने वाला चुगली करने वाला दूसरे को दुख देने वाला अपने मनमानी करने के लिए औरों को कष्ट उठाने कष्ट देने वाला है, वो अपने अंतःकरण को बहुत मैला कर लेता है, ज़्यादा मैला कर लेता है, तो ऐसा पुरुष परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता, अंतःकरण मैला हो जाता है, तो वो क्रोध नहीं करता, उसका अपकार करने पर भी वो समझता है भाई इसने कुछ किया है जो हमारे हुआ है वो तो होने वाला हुआ है, तो होने वाला क्रोध कर करता है हमारे होने का, तो हमारे तो पापों का नाश होता, हमारे तो शुद्धि होते, और उनके त्याग रहता है स्वाभाविक ही, संसार में राग नहीं रहता, शांति और शांति रहती, अशांति मन में इच्छा पैदा होने से होती है, लोग कहते हैं अशांति बहुत है, तो अशांति है तो कुछ न कुछ चाहना है, अगर चाहना न हो संसार की तो अशांति भंग नहीं होती, शांति स्वतः सिद्ध है, अशांति पैदा की हुई होती। एक संत की बात सुनी कि वे बैठे थे, एक कोई माई आई, उन्होंने कहा कि महाराज मैं केला लाई हूँ केला ले लो, तो कहने लगे मैया क्या केला ले, हमारे मन में तो बड़ी हलचल हो रही है दुख हो रहा है, तो बोली कि ये केला तो ले और मन की बात को छोड़ दो हलचल मिट जाएगी, ऐसे कर चली गई, तो केला क्या देगी उपदेश भी देगी साथ साथ, केवल शरीर की खुराक नहीं भीतर की खुराक भी दे गई, कि वो बात पकड़ी वो छोड़ दो, छोड़ी शांति हुई, अशांति तो पकड़ रखी है आपने स्वयं बनाकर है थोड़ी। अब ऐसा उनकी प्रसन्नता का स्वभाव नहीं होता। प्रसन्नता कहते हैं चुगली को, चुगली करना, इसलिए उसके अगर उसके उस गर्दा करके आपस में आग लगा दे, ये प्रसन्नता होती है। उनमें अपहिष्ण होता है, ये दोष नहीं होता। दया भूतेश और प्राणियों के ऊपर दया स्वाभाविक होती है, स्वतः ही हृदय द्रवित रहता है, किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे। तो भगवान के तरफ चलने वालों में भगवान का स्वभाव आता है। अरे भगवान है सुहृद सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के सुहृद, तो वे भी सुहृद सर्वदेही नाम होते। अनोलुप्तम पदार्थों में लोलुपता नहीं होती। सामने भोग पदार्थ आ जाए, इंद्रियों के सामने भोग आ जाए, अपने सामने द्रव्य आ जाए, ऐसे में लोलुपता होती इंद्रियों की, और पैसे आदि देखने में लोभ लालच पैदा होता है कि किसने से अपने हस्तगत कर ले, ऐसी लोलुपता उनमें नहीं होती। उनमें तो मर्यादा के अनुसार क्रिया करते हैं, पदार्थों के देखने से कोई ऐसी बात नहीं। इस वास्ते अलोलुप्त मार्दवम, हृदय का मृदु भाव होता है, कोमल भाव होता है। आर्दव का वो शरीर आदि का है, यहाँ हृदय कोमल होता है। हृदय कोमल की पहचान है कि दूसरे का दुख सहा नहीं जाता। इस वास्ते संतों के हृदय को और भगवान के हृदय को बताया है कि वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, हृदय उनका कठोर वज्र से भी कड़ा होता है और कोमल से कोमल पुष्प से भी कोमल होता है। दोनों कैसे कि खुद पर आफत आ जाए तो वज्र की तरह कठोर होते, परवाह नहीं करते, और दूसरों का दुख हो जाता है तो मन उससे द्रवित हो जाते कोमल की तरह, मन कमल फूल की तरह। इस बात से कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, मक्खन की तरह बताया, ये कहना आया नहीं। क्यों निज परिताप द्रव्य नवनीता, मक्खन को तो खुद को ताप लगे जब द्रवित होता है, संतों का पुनीत हृदय दूसरे का दुख देख करके द्रवित हो जाता है, तो दूसरे का दुख देख नहीं सकते। पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दुख दुख और सुख सुख देखे, पर दूसरों के सुख से सुखी, दूसरों के दुख से दुखी होते। मार्दम ही रचा बलम और ही होती है शर्म, शर्म का शास्त्र निषिद्ध काम हम कैसे करें। एकांत में भी छिप करके भी शर्म आती है कि भगवान का हूँ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। अच्छा पर वो चंचलता नहीं होती, धैर्य पूर्वक अपने कामों को करता रहता। भवंति संपदम देवी अभिजात श्री भारत, देवी संपत्ति को जो प्राप्त हुआ है, देवी संपत्ति को लेकर पैदा हुए हैं, उनके ये लक्षण होते हैं। देवी सब परमात्मा की तरफ लक्ष्य हो जाता है तो देवी प्रकृति देवी संपत्ति को वो अभिजात है। इस वास्ते उसके ऐसे दैवी गुण होते हैं, स्वाभाविक ये गुण अच्छे लगते हैं। इनमें कुछ कमती होती है तो भगवान की तरफ चलने से देवी संपत्ति आ जाती है। एक ध्यान देने की बात है, गुणों के पीछे पड़ने से गुण इतने अपने उपार्जित नहीं होते, केवल भगवान के ही पीछे पड़ जाए, भगवान को याद रखे, स्वतः भगवान में ही बना रहे, तो उसके गुण बिना बुलाए आपसे आप देवी संपत्ति आ जाती है। जैसे राजा आता तो राजा का और सब सब का सब फौज पलक में साथ आ जाती, ऐसे परमात्मा की तरफ ध्यान होने सब देवी संपत्ति आ जाती है। तो हम परमात्मा के हैं, हमारे परमात्मा है, ऐसे अपना पंथ प्रभु के शरण हो जाए, उसमें देवी संपत्ति बहुत सुगमता से आ जाती है। जैसे बच्चा अपने माँ के चरणों में पड़ा रहे, माँ पुकारे, माँ की गोदी में रहे, माँ का दूध पिए, माँ की तरफ ही देखे, ऐसे भगवान की तरफ ही रहे, भगवान के चरणों में पड़ा रहे, भगवान के मुख की तरफ देखता रहे, भगवान का ही बना रहे, तो ये साधन मामूली नहीं है, बड़ा भारी साधन है। उसमें सद्गुण सदाचार बिना बुलाए स्वतः आ जाएंगे, क्योंकि देव परमात्मा के साथ संबंध हो गया, अब देवी संपत्ति आपसे अब आवेगी। उस भक्त को ही पता नहीं कि मेरे में देवी संपत्ति है। जैसे बताएंगे शबरी की भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति रघुनाथ जी महाराज सुनाते हैं, तो भक्ति उसमें सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सब तरह की भक्ति दृढ़ थी। सभी को ये पता ही नहीं कि मेरे में भक्ति है, वो जानती ही नहीं, ना नौ प्रकार जानती है, ना ऐसा मानती है। तो भगत होते हैं परमात्मा के प्यारे, उनमें अवगुण आदि संपत्ति तो रहती नहीं, देवी संपत्ति का उनको ज्ञान नहीं होता है कि मेरे में ऐसे विलक्षण संपत्ति है। कारण क्या है कि देवी संपत्ति उनके साथ मिल जाती है। आंख में लगाया अंजन आंख को नहीं दिखता, थोड़ा दूर होने पर दिखता है। ऐसे अपने में गुण अच्छे भाव दिखते हैं तो अभी अच्छे भाव के साथ हमारी एकता नहीं हुई है, तब हमारे में अच्छे गुण है ऐसा दिखता है। और जब ये सब आत्मसात हो जाते हैं तो अपने में गुण दिखते नहीं और अवगुण रहते नहीं, ऐसी स्थिति होती है देवी संपत्ति वालों की। तो अभी उसमें ये लक्षण होते हैं। ऐसे दम्भोदर को भी मानस आसवी संपत्ति में दम्भ होता है, दिखावटीपन। लोग मेरे को संत समझे, महात्मा समझे, त्यागी समझे, विद्वान समझे, अच्छा समझे, ऐसा भाव रह करके जो नहीं होता है वैसा बढ़ जाना, नहीं करना चाहिए वैसे करने लग जाना, रुचि न होने पर वैसा ही काम करना जिससे लोग हमारे को अच्छा समझे, वो दम्भ होता है। बुरे आदमियों में जा करके अपने हृदय बुरा न होते बुरे आचरण करने लग जाते हैं, ये बुरे आदमी भी हमारे को अच्छा समझे तो अच्छे लाभ के लिए, पूजा के लिए, प्रसिद्धि के लिए, आदर मान पाने के लिए हृदय से वैसा न होकर के वैसा बन जाए, वो दम्भ है। ऐसे ही दर्प होता है चीज़ों की। आपस मेरे पास भी तो धन है, इतनी संपत्ति है, इतने मनुष्य, इतनी जमीन है, इन बोध लेकर जो अपने में बड़प्पन मानता हूँ दर्प है। अरे अभिमान, मैं ऐसा हूँ, विद्वान हूँ, त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, समझदार हूँ, ऐसे मैंपन को लेकर होता है वो अभिमान होता है, मेरेपन को लेकर होता है दर्प होता है। क्रोध है प्रारुष व्यवस्था, उनमें अक्रोध होता है, उनमें क्रोध होता है। थोड़ा भी मन से विरुद्ध कोई आचरण देखता है तो सहा नहीं जाता, क्रोध हो जाता है, क्रोध ज्यादा रहता है, क्योंकि कामात क्रोध हो भी जाते, काम में रहते हैं ना कामात्मा, ना काम स्वरूप बने हुए रहे आसु संपत्ति वाले, इस वास्ते उनके क्रोध ज्यादा होता है। क्रोध पारुष्य में वजह और कठोरता होती है, वचनों में कड़ापन रहता है, दूसरे को दुख देते हुए बोलते हैं, चुभने हुए वचन बोलते हैं। कहा है न कंचन मरण मरमणि स्पर्शेत, किसी के मर्म को स्पर्श न करे। परंतु आसु संपत्ति वाले ढूंढ कर ऐसा वचन कहते हैं जिसमें उसमें मन में तीर की तरह लग जाए, खोज कर ऐसा करते हैं, विशेष कर ध्यान देते हैं जैसे उनमें जलन पैदा हो जाए, ऐसे कठोर बोलते। तो कठोर बोलना आसु संपत्ति है, ये अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हराकर नीचा दिखाकर अपना काम बनाने का भाव रहने से उनमें वाणी में बड़ा कठोर होता है, स्वार्थ भरा रहता है, इस वास्ते क्रोधादिक रहते हैं। और अज्ञान, वो विवेक है उससे रहित तो होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, किस समय में कैसा किसी के साथ बर्ताव करना चाहिए, ये ज्ञान विवेक हुआ नहीं रहता, अभी एक बिल्कुल काम करते हैं। ये आसवी संपत्ति को लेकर पैदा हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो ये आसवी संपत्ति पहले से है लेकर के उनके होते हैं, ऐसे देवी संपत्ति पहले से ही गुणों में लेकर के होते हैं, और यहाँ पर भी उद्योग करते देवी संपत्ति आदि संपत्ति को लेकर, उनमें ये गुण होते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य होने पर वे देवी संपत्ति में पैदा हुए हैं, और संसार का उद्देश्य लगते हैं वे आदि संपत्ति में पैदा हुए, उनके ये लक्षण होते हैं। देवी संपत्ति विमोक्ष आय फल बताते हैं कि देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और निबंधाय आसवी माता, ये मुख्य फल बताया। देवी संपत्ति है वो मुक्ति के लिए, परमात्मा का ध्येय ध्यान लग गया, परमात्मा के ध्येय बन गया, परमात्मा के लक्ष्य बन गए, ऐसे है वो देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है। और आसुरी संपत्ति जो कि प्राण चाहते हैं, जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, प्राकृत पदार्थों के संबंध से सुख चाहते हैं, वो आसुरी संपत्ति में भरे हुए है, वो बंधन के लिए बार बार जन्मना मरना उनका होता है। ये दोनों का फल बता दिया। भगवान कहते हैं दो भूत स्वर्ग लोकेश्विन दैव असुर एवच, संसार में दो तरह की सृष्टि है, एक दैव सृष्टि है, एक असुर सृष्टि है। असुर स्वभाव वाली सृष्टि देवी का तो मैंने विस्तार से अभी 26 लक्षण बताए, असुर के 6 बताए, इससे पहले ही अमानित्व आदि ज्ञान के नाम से कहे, योग के नाम से कहे, सिद्ध प्रज्ञ के नाम से कहे, भगवत भक्ति के नाम से कहे, सिद्धों के और साधकों के लक्षण वो देवी संपत्ति बहुत विस्तार से कही, असुर संपत्ति विस्तार से नहीं कही, वो तू मेरे से सुन। अब आगाड़ी कहते हैं कि प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान विद्रासुरा, तो आसु संपत्ति वालों क्या होता है, जो अज्ञान चाबीजातों से अज्ञान बताया सबके बाद में, वो अज्ञान उनके मुख्य होता है पहले अविवेक। तो अविवेक का अर्थ क्या कि प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान विद्रासुरा, आसुरा जना असुर प्रकृति वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है, किस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए किस कार्य में निवृत्त होना चाहिए, और निवृत्ति में भी निवृत्ति क्या है प्रवृत्ति क्या है, वो आसुरी प्रकृति वाले जानते नहीं। आसुरी परिवार से केवल स्वार्थ में लगे हुए हैं ना, दो बात मुख्य होती है, भोग भोगे और संग्रह करना, पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख लेना, ये दो बात मुख्य होती है आसुरी संपत्ति वालों के। तो वो क्या जानेंगे क्या प्रवृत्ति क्या निवृत्ति होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धन आ जाए भोग मिले वो करना चाहिए, धन चला जाए भोग मिट जाए वो नहीं करना चाहिए, बस वो प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते, प्रवृत्ति जनन न विद्रासुरा। बात एक विलक्षण है, भगवान ने आसुर संपत्ति का वर्णन किया है तो हमारे तो ऐसा असर पड़ता है कि आज का जो ढंग है उसका एक खाका खींचा है, तस्वीर कहाँ से असुरी प्रकृति शुरू होती है कि सबसे पहले यहाँ से होती है प्रवृत्ति निवृत्ति। बड़े बड़े पढ़ जाएंगे पर माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करें, स्त्री पुत्र के साथ बर्ताव कैसे करें, बड़ों के साथ कैसे करें, वर्ण आश्रम में बड़े उनके साथ कैसा बर्ताव, यही जानते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना विदुरासुरा, न शौचम और शुद्धि नहीं होती। शौच तो पवित्रता है, जल मृतिका आदि से ठीक करना, ये पवित्रता बेचारी जवाने हो गई कुछ जानते ही नहीं, सफाई को जानते हैं, सफाई कर देनी चाहिए चीजों की, सफाई कर दो साफ करके हड्डी लाकर रख दो तो कोई हर्ज नहीं क्यों सफा हो गया है। तो सफाई और चीज है, शुद्धि और चीज है, शौकी नहीं और चीज है, ये दिखने में एक से दिखते हैं, सुंदर लगाने के लिए जो अपने श्रृंगार करते हैं वो सुंदरता होती है, और चीज को साफ कर देना उतना सफाई होती है, यार शुद्धि पवित्रता होती है। मैं तो पवित्रता को जानती नहीं, पवित्र क्या होता है अपवित्र क्या होता है अकल में नहीं आती, वो कह दिया जाए तो भी नहीं, और सफाई हो जानी सफाई कर दो ठीक है, साफ हो जाएगा, अरे साफ होते हड्डी को कितने साफ करो शुद्ध कैसे हो जाएगी, चीज ही अशुद्ध है मलमूत्र को शुद्ध कैसे कर लोगे, कर दो वो तो कहते हैं बस साफ हो गया इसको कर दिया जाए तो मैला है उसमें से चिकनास निकाल कर साबुन बनाते हैं नहाने का, नहाने के साबुन में विष्ठा इकट्ठी कर उसका सार जो चिकनापन वो लेकर के साबुन बांधो, साबुन बढ़िया होता है और बढ़िया होता है उसे नहाते हैं शुद्धि करते हैं तो सफाई तो हो जाएगी, पर शुद्धि क्या मैला रगड़ने से कोई शुद्ध होता है, दूसरा चर्बी डाल करके बनाते हैं साबुन तो वो चर्बी का जो मुर्दा है वो रगड़ दिया साबुन शुद्ध हो गया, शुद्ध कैसे अशुद्ध हो गया भैया सफाई तो आ गई, हाथ ही धोई मिट्टी से नहीं होकर के साबुन से, वो साबुन में जिसमें चर्बी मैलार बढ़ाऊ उससे करते हैं वो शुद्धि नहीं होती, मिट्टी से शुद्धि होती है, और इनसे तो अपवित्रता रहती है, तेल रहता है चर्बी रहती है, तो तेल का स्पर्श है वो भी अशुद्ध माना है, और चर्बी तो महान अशुद्ध होती है मार करके निकालते हैं, तेल को भी पेरते हैं ना तेलों को, इस वास्ते तेलों में तेल में भी अशुद्धि मानी है, छूना नहीं चाहिए, छुए तो स्नान करना चाहिए, इस वास्ते आया है कि पहला भंगे चितासंग है मैथुन एक क्षौर कर्मणि तावत भगवती चार डालो यावत स्नान आचरित, तेल लगा करके चिता में जाकर मुर्दे के साथ जाकर के स्त्री संग करके और हजामत करा करके स्नान करना चाहिए, जब तक स्नान नहीं करे तब तक चांडाल है अस्पृश्य है वो, ऐसा बताया, उन्हें अशुद्धि क्या होती है, वो अशुद्धि मानते ही नहीं। न शौचम न आचार न स्वाचार, शौच सदाचार जानते, सदाचार बड़ों के साथ कैसा है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इस बात को जानते ही नहीं। बेचारे क्या करे, ऐसे ही माँ बाप को तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे। अब वो जाने कैसे, छोटी अवस्था में भी उनको कुछ सिखाया नहीं, छोटी अवस्था में सिखाया तो उल्टी बात सिखाई। छोटा बच्चा होता है, माँ बाप खिलाते हैं तो कहते ले ये मार तेरी माँ के, मार वो मारता है, हंस दे दो नहीं तो ये सीख दे, माँ को मार ये तेरे बाप को मार ले, वो मार देता है, हंस जाते हैं दोनों राजी होते हैं। ये नहीं समझते कि तुम तो हंसी करते हो, ये सीख गया, शिक्षा ले ली, ये अभी मारेगा माँ बाप को, क्यों वो तो सीख गया, अब शिक्षा आएगी। ऐसी ऐसी बातें सिखाने में भी ऐसी ऐसी शिक्षा दे देती है। माई और भी भाई भी अपने बच्चों के सुधार की तरफ ध्यान नहीं देते कि इनके चरित्रों पर क्या असर पड़ेगा, इनका भाव कैसा होगा, इन बातों की तरफ देखते ही नहीं। फिर स्कूल में चले गए तो वह क्या होता है बेचारे, गुरुजनों की आज्ञा पालन करो, गुरुजनों से सीखो, ऐसा भाव नहीं होता वहाँ तो गुरुजनों से, पढ़ते ही नहीं, पढ़ते नौकरों से, चाहे जिस नौकर को रख दे, चाहे जिस मास्टर को उतार दे, निकल निकाल दे, तो नौकरों से विद्या थोड़ी आती है। नौकरों से कोई बात काम करा लो, बेशक गुरुजनों से आती है विद्या। तो प्रकाश भीतर मिलता है गुरुजनों की शिक्षा से, तो गुरुजन तो है ही नहीं, गुरुजन तो बेचारे खड़े रहते हैं काले बोर्ड के पास में, वे कुर्सियां पर बैठे रहते हैं, बोर्ड से सिखाओ सब, तो ऐसी बात है। इस बात से उन्हें कैसे शिक्षा मिले, तुम न सोचम ना विचाचार न सत्यम तेसु विद्यते, सत्य है ही नहीं, सत्य क्या और झूठ क्या होता है, जैसे काम बने वैसे ही कर दिया, बिना मतलब ही मत झूठ बोल दिया। कहते हैं कि मनुष्य की वाणी गाड़ी का चक्का तो घूमता ही रहता है, एक तो छोड़े एक तो एक दिन क्या रहे, परवा ही नहीं, ऐसे ही बोलते रहते। सच्चे पुरुष होते हैं वो बात के पक्के होते हैं, प्राण जाए पर बचना न जाए, समझे ना, ऐसी बात है हमारे बड़े बड़े पुरुषों की, तो प्राण जाए पर बचना न जाए, दशरथ जी ने करके दिखा दिया। तो ऐसे वो अपने सत्य पर रहते हैं, आज भी संपत्ति वालों के न सत्य न सोच ना विचार न सत्यम तेज विद्यते, अब सत्य अपने में नहीं तो असत्य असंसार, संसार को असत्य है, अप्रतिष्ठित है, इसकी कोई आधार नहीं है, कोई नहीं है, अनिश्वर का ईश्वर कोई नहीं है, शासक कोई नहीं है, इनका कोई मालिक नहीं है, ऐ तो ऐसे ही कैसे हो गया अपरस्पर संबोध में, आप सब मिल संसार बना, इसमें क्या बात है, संसार क्या है, अपरस्पर संबोध कहते उसमें कोई हेतु होगा, कारण होगा, भगवत इच्छा होगा, कर्म होंगे, कहते काम है ही तो कम, एक उसको तो उसी कामना, उसको उसी कामना मिले रे बच्चा पिता, अपरस्पर संबोधन किमन्यत काम है तो कम, ये उनका सिद्धांत, एतान दृष्टि अवस्तव्य, ये दृष्टि है उनकी, ये ज्ञान है, ये शास्त्र है उनका। नष्टात्मान पतिन तो हो ही चुके, गिर चुके ही, अल्प बुद्धि बुद्धि तुच्छ रह गई, प्रबंधुग्रकरमान क्षाया जग तो हिता, वे अहिता शत्रु बने हुए दुनिया के नाश करने के लिए ही प्रभव होता, उनमें जो सामर्थ्य आती है वो सामर्थ्य दूसरों के नाश के लिए, विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार जो कुछ मिलता है, बस दूसरों की ठीक तरह से खबर लेना है, नाश करने के लिए उनका सामर्थ्य होता है। उग्र कर्मान बड़े क्रूर कर्म होते जगत अहित अहिता सबके शत्रु बन करके क्षाया या प्रभु, काम आश्रय दुष्पूर्व आश्रय किसी का लेते हैं क्या, किसी के इष्ट का आश्रय होता है ना, काम आश्रय दुष्पूर्व, काम का आश्रय मतलब सिद्ध कहाँ से होगा, हमारा स्वार्थ सिद्ध कैसे होगा, बस इस पर ही दृष्टि रहती है। चाहे दान करे, चाहे पुण्य करे, चाहे भजन करे, चाहे व्यापार करे, चाहे खेती करे, चाहे गऊ रखे, चाहे कुछ भी करे, पैसा पैदा कैसे हो, एक लक्ष्य काम आश्रय, कामना पूरी कैसे हो हमारी, वो धर्म है पुण्य है पाप है क्या है, परवाह नहीं। तो ये ऐसे आज भी संपत्ति आती है, दम्भ मान बना देता, दम्भ मान मद के अनुसार दम्भ पाखंड करते रहते, अपना मान चाहते रहते, मद में घमंड में चूर रहते, हम ऐसे हैं ऐसे हैं। मोहाद गिरित वासद ग्रहण, वे भी कोई हाथ पकड़ेंगे तो मूढ़ता से पकड़ेंगे, विवेक पूर्वक किसी मत पर स्थित हो जाए ऐसा नहीं। मोहात ग्रह तो असत ग्राहान, उनके नियम आदि के अशुचि प्रथा होते हैं, मूढ़ता से ऐसे ऐसे व्रत धारण कर लेते हैं, नियम हम तो ऐसा करेंगे, वर्ण धर्म को मिटाएंगे, आश्रम धर्म को मिटाएंगे। ये जो व्याधि का संबंध है ना, हम तो सगोत्र ब्याह करेंगे, दूसरी जाति से करेंगे, ये नियम उनका वैसे पालन करेंगे, इस तरह से हमें तो करना है, विधवाओं का ब्याह करना है, हमें तो शास्त्र निषिद्ध काम करना है ये। और विवाह कैसा होगा भाई, विवाह में तो कन्यादान होता है, अब देने लेने वाला तो मर गया, देने वाले ने दे दी, अब कन्यादान कौन करेगा, कन्या है ही नहीं, विवाह कैसा हुआ है, तो वो व्यभिचार है। परंतु वो व्रत ये नियम कर लिया गया, तो ऐसा करना है, सब में सब पैदा मोहादिकृत्वा मूढ़ता के कारण से मनुष्य कैसे निर्वाह कर सकेगा साहब, तो निर्वाह नहीं कर सकेगा, इस वास्ते करना ही पड़ेगा। तो एकादशी का व्रत कैसे कैसा निर्वाह नहीं कर सकते, तो एकादशी का अन्न खाना चाहिए, ये विधान कर दो, क्योंकि भूखे रह नहीं सकते, इस वास्ते अब धर्म के पालन में नहीं रह सकते, धर्म को छोड़े ये धर्म होता है क्या, नहीं रह सकते, तो नहीं रहे तो कानून ही ऐसा बना दो, कोई धर्म तो बने ही नहीं। वाह बुद्धि की बने आ रही, ये बात अशुचि प्रथा मोहादिकृत्वा असत ग्रहान प्रवर्तन्ते अशुचि प्रथा। ऐसे तो कर्म होते हैं, चिंता परिमेयांच, बड़ी चिंता लगी रहती है, बड़ी भारी चिंता, शोक लगे रहते हैं, छोड़ते ही नहीं, मरने तक चिंता नहीं छोड़ते, क्योंकि काम का आश्रय लिया है, काम का आश्रय ले लिया, चिंता में परिमेयांच प्रलयांत पास कामोपभोग परमा, चिंता करते हैं तो चिंता कैसे कल्याण हो, धर्म का पालन कैसे हो, सत्य का पालन, ऐसे चिंता नहीं हो तो क्या होता है जी। हाँ कामोपभोग परमा, बस संसार के पदार्थ को संग्रह करना, भोग भोगना, आखिरी हद यही है, बस यहाँ तक ही। और कहते हैं सभी ऐसे ही साधो को जाओ, विषय हो जाओ, दुकान तरह तरह की न्यारी न्यारी माल की दुकान होती है, मतलब तो पैसों से है। साधु में जाओ, गृहस्थों में जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ, जहाँ कहीं पैसे बिना काम चलता नहीं, और पैसा ही उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। एक जगह अपने सुने बिहारीगंज मुरलीगंज वहाँ की बात है, किसी ने कहा रहे एक ऐसे साधु है जो पैसा नहीं लेते, अरे पैसा नहीं लेता, रुपया लेता, रुपया पैसा नहीं। के रुपया नहीं लेता, कि एक दो चार रुपये ला, सौ रुपया मेरे को दे ले, नहीं देखो मैं बताऊँ, एक दो रुपया नहीं लेते, उसे जची नहीं सकते, एक रुपया नहीं लेना भी कोई हो सकता है, ऐसा निश्चय कामो कामो भोग परमा एतावत निश्चिता, ये निश्चित पक्की बात है, संग्रह करना सुख भोगना ये ही है, नहीं लेते तो क्यों लेते, नहीं नहीं लेते रोटी खाते हैं कि नहीं, गाड़ी में चढ़ते हैं कि नहीं, कपड़ा पहनते हैं कि नहीं, मकान में रहते हैं कि नहीं, ये बिना पैसे होते नहीं लेते, ये बिल्कुल झूठी बात है, कोई मतलब की बात नहीं, क्या बिना मतलब बिना पैसे मकान बनता है क्या, कपड़ा पहनते तो बिना ही बन जाते, कोई कहते कपड़ा ही नहीं पहनते, वे तो ऐसे ही रहते हैं, कोपी केले के पत्ते की कोपी लगाए हुए रहते हैं, ऐसे मकान में नहीं रहते, मकान में नहीं बाहर रहते, रोटी खाते हैं नहीं, रोटी तो खाते हैं, रोटी पैसे नहीं लगते, पैसे के बिना किसी काम चलता ही नहीं, क्यों एतावत निश्चित था, ऐसा निश्चित पक्का मत उनके बनाए हुआ, भगवान के भक्त भी दृढ़ होने पर वे भी दृढ़ में कम नहीं होते। आशा पार बद्धा, सैकड़ों आशा की फांसी बंधी रहती है, ये मिल जाए, इनमें ऐसा मिल जाए, वो ऐसा कर दे, उसे ऐसा हो जाए, काम क्रोध परायणा, जैसे भक्त भगवान के परायण होता है, धर्मात्मा धर्म परायण होता है, वे काम क्रोध परायणा, काम के क्रोध के परायण होते हैं, परम ऐन उनका स्थान काम और क्रोध ही रहता है, इनका ही आश्रय लेते, ई हंते काम होगा अर्थ अन्याय संचय अन्याय पूर्वक धन का संचय करते झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके धन संग्रह करते हैं। क्यों करते हैं? काम भोगार्थम, अपनी कामना पूरी करेंगे, भोग भोग करेंगे, ऐसा आरामी करेंगे, इसके लिए अन्याय पूर्व धन का संग्रह करते हैं, चेष्टा करते हैं रात दिन। इस मध्य में आलोक भजन स्मरण भी करते हैं, कठिन संध्या गायत्री भी करते हैं, तो संध्या करते हैं तो इस मध्य में आलोकम प्रयासी मनोरथम, इतना तो धन मिल गया है, इतना और आ जाएगा, इतना तो पैदा होने वाला है ही, इतना छोरे के संबंध होने से इतना धन तो और ही आ जाएगा, इतना किराया आ जाएगा, इध मध्य में आलब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम इध मस्ती, इतना धन मेरे पास पहले से मौजूद है, भविष्यति पुनर्धनम, इतना धन पीछे हो जाएगा। ये काम और क्रोध का अशोभमय आता शत्रु, वो जो मेरे साथ टेढ़ा टेढ़ा चलता था ना, उनके दिल में तारा दिखाई दिया, अनिश से अपराण अभी और जितने गए संसार में उनको मैं देख लूंगा सबको ठीक से, ईश्वर हम, क्योंकि मैं सब समर्थ हूँ, मेरी सामर्थ्य कितनी है, अहम भोगी, बड़े बड़े भोग भोगे बड़े करे है सारा में, हमारे पास संपत्ति का कोई पार है इतनी हमारे पास में जो कुछ है, सिद्धो हम, आप कहते हो मैंने कहा था कि नहीं पहले, बोलो ऐसी बात हो जाएगी, हम पहले से जानते हैं ये बात यूँ होने वाली है, इनको पूछो मैंने कह दिया था पहले ऐसी बात हो जाएगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मेरे से टक्कर लेकर कोई जीता रह सकता है संसार में, मैं बड़ा सुखी हूँ, बड़ा मौज है रही हमारे, तो किसी बात की कमी है हमारे, सब ठाट बाट है हमारे, भगवत भजन करो भजन करे, जिसकी कमी हो हमारी कमी है ही नहीं, हमारी कुछ कमी हो तो इसकी गर्ज करे क्या गर्ज हम करें, चापलूसी करने की जरूरत क्या, आज जनवान में धनवान तो मैं ही हूँ, और मनुष्य देखो एक आवाज देते हैं बीसों आदमी मेरे खड़े हो जाते, इतने आदमी हमारे पक्ष में है, कितना हमारे कुटुंब में हमारे पक्ष में कितने आदमी हैं, अब वोट लो किसको ज्यादा मिलते हैं, हम ऐसे कौन हो भैया, किसी की माँ ने खून सून खाई तो आवे मेरे सामने मेरा मुकाबला करे, आपने देखा कोई मेरे समझ, इतने आप घूमे हो फिर हो परंतु मेरे समझ मिला कोई, हम ही है सब, कोई नहीं उसी शरीर हो गया, यक्ष है कहते यज्ञ दान तब फिर हम करेंगे, यज्ञ किया नहीं तो क्या हुआ, ऐसा करेंगे तो सब टांग फेर दे, ऐसा यज्ञ करेंगे, दान देंगे तो थोड़ा बहुत थोड़ा ही देंगे हम दान, बड़ा दान करेंगे लोग दे थोड़ा थोड़ा करते हैं, ब्राह्मण भोजन कर दिया कोई ऐसा कर दिया, हम ऐसा नहीं करते, हम करेंगे देखना मोदी से फिर मस्त हो जाएंगे, तो कैसा यज्ञ किया हमने, कैसा दान दिया, वारे हम इतनी अज्ञान विमोहिता, भगवान कहते ऐसे अज्ञान से मोहित है, अज्ञान में छाप जाते से नहीं अज्ञान कोई प्रवृत्ति से निवृत्ति न विदु हूँ इति अज्ञान विमोहिता, ऐसे वह आज संपत्ति वाले होते हैं। अब अनेक चित्त विभ्रांता मुख जाल समावृता, अनेक चित्त की भ्रांतियां भ्रांतिया मित्र में ऐसी हलचल मची पड़ी है, निकाल नहीं सकते बाहर से बड़े सुंदर अच्छे बन जाए, भीतर में हलचल रहती है, ऐसे अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, मूढ़ता के जाल से मछली जैसे जाल में फंस जाती है, ऐसे मोह जाल में फंसे हुए है, कुटुंबी है वो इतना मेरा है वो तेरा है वो हमारे पक्ष है वो पक्ष गहर, ऐसे प्रसन्नता काम भोगे सो पर संग्रह करना और भोग भोगना ये खास चीज, इसमें आसक्त रहता पतंती नरके शुचौ, भगवान कहते हैं अशुचो नरके पतंती, अशुद्ध नरकों में पड़ते हैं, अशुद्ध नरकों में पड़ते हैं, नरकों में विशुद्ध नरक होते हैं क्या लिखा ऐसा पतंती नरके अशुचौ, तो अशुद्ध नरक शुद्ध नरक कौन से, अशुद्ध नरक कहने का नरकों में भी घोर यातना जहां महान संकट होता है, ऐसे घोर यातना वाले नरकों में गिरते, आत्म संभाविता सबधा अपने को ही सबसे बड़े मानते हैं, कठोर किसी के साथ नम्र होते ही नहीं, आत्म संभाविता सबधा धनमान मदान्विता, धन के और मान से मद रहता घमंड, हमारे धन कितना हमारा मान आदर सत्कार कितना है, लोग कितना हमारे को अच्छा मानते हैं, यजंते नाम यज्ञ, यज्ञ करेंगे तो नाम यज्ञ, बड़ा भारी नाम करेंगे और बस भोजन कराओ, सबको भोजन कराओ, तीन दिन चार चार पत्तल दे दो, पांच पांच दस सब बार फेंके, इतना ब्राह्मण भोजन हुआ सा, इतना लोग प्रीति भोज हुआ है आज, ऐसा ऐसे नाम तो हो ज्यादा और दाम लगे कम, ऐसे बनाओ मिठाई भी ऐसी बनाओ खाने, खीर डाल जिसमें डाल दो कपूर, ज्यादा खा नहीं सके, खीर का भोजन नाम यज्ञ से दम्भे न अभिधि पूर्व, दम्भ पूर्व पाखंड से लोगों को दिखाने लगे, सास के विधि विधि हम नहीं जानते, हमें लकीर के फकीर थी क्या विधि होती, भोजन का भी पेट भर जाता, विधि क्या होती, अहंकार बलम दर्पण कामं क्रोध सदा अहंकार बल घमंड, अपना हर ठर जिधर इसके आश्रित होते, अहंकार बलम दर्पण कामं क्रोधम संस्कृता, दुख देते हैं शरीर को भी, कष्ट देते हैं और सबको दुख देते हैं, और क्या है, ऐसे पुरुष होते हैं द्वेष करने वाले, उन क्रूरों को पहले शब्द आया है जना हुआ, बीच में मनुष्य का वाचक शब्द नहीं आया, तान दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान, या नर शब्द आया, नराधम है, नराधम होते हैं वो मनुष्यों से भी नीचे होते हैं, इस वास्ते नराधमान तान नराधम, कृपा में दृष्टि आज भी आज भी योनि में गिराता हूँ, पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू ऐसी जोड़ियों में पटकता हूँ, राष्ट्रीय योनि में अपन ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम प्राप्ति कौन दे तत्व जन्म जन्म में ऐसी योनि को प्राप्त होते हैं, उससे भी फिर घोर नरकों में जाते हैं, भगवान कहते माम अप्राप्य, अरे मेरे को तो प्राप्त हुआ ही नहीं, कहाँ चला गया तू, और भगवान की प्राप्ति का कोई अवसर था क्या यहाँ, आज भी संपत्ति में, आज भी संपत्ति की है महाराज मनुष्य शरीर में आकर, तो मनुष्य शरीर मिला मेरी प्राप्ति के लिए, प्राप्ति तो मेरी करनी चाहिए, और आज भी योनि और नरकों की प्राप्ति की, माम अप्राप्य कौन तो यानी, तो महाराज कैसे बचे, तो कहते तीन प्रकार का नरक दरवाजा है, काम और क्रोध और लोभ, इसमें एक में आ जाए बस चला जाए नरक में सीधा, त्रिविध नरक से द्वार को नाश, अपना पतन करने वाला तीन दरवाजा काम और क्रोध सालोभ, चश्मा दे तो त्रयेत, एते विमुक्त कौन थे, इनसे तो रहित हो जाए, उद्देश्य लक्ष्य इनका नरक करके केवल भगवान की तरफ ही चलेगा, वो देवी संपत्ति में आ जाएगा, कौन थे तुमो द्वारे स्त्री नरा आश्रति आत्मना श्रेय, अपने कल्याण का आसन का तो याति परांगति, फिर परम गति को प्राप्त हो जाते, और यह जो शास्त्र विधि को छोड़ कर के मन माने ढंग करते हैं उसके महाराज सब निष्फल हो जाते, न सिद्धि माप न होती, न सुख न परांगति, न सिद्धि होती, न सुख मिलता न परम गति मिलती, काम अच्छा करे तो भी शास्त्र की अवहेलना कर करते हैं तो निष्फल रह जाते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्या कार्य व्यवस्थित, आरंभ चला था कि वे प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते तो करें क्या, कि शास्त्र सामने रहेगा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते शास्त्र कार्या कार्य व्यवस्थित, ज्ञात्वा शास्त्र विधान हो तुम शास्त्र का विधान समझ करके कर्म कर तुम्हें हार हसे अर्जुन, तुम तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करो, तुम करने के योगी हो, ऐसी ये देवासुर संपद विभाग योग नाम है, सोरवाद देवी संपत्ति और आसुर संपत्ति, ऐसी नारायण 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 ने महाभारत की कथा कही वर्णन किया तो उनकी अशांति हो गई, नारद बाबा आए तो बड़ा जैसे अशांत कैसे बैठे हो, मेरे तो भाई चित्त में शांति नहीं है, तो मारकूट का मारकूट का वर्णन किया शांति कैसे हो, अब भगवान के गुण वर्णन करो भागवत कहो जो शांति हो जाएगी, तो भागवत करने शांति हुई। अभी तो आंसू है, ये पूरा कर किया आपके सामने, थोड़ा भगवान नाम ले लो बैठ। शुद्ध हो जाए। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे
जय जय प्रभु दीन दयालु हरे
गोविंद हरे गोपाल हरे
गोविंद हरे गोपाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे
गोविंद हरे गोपाल हरे
गोविंद हरे गोपाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे
राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 2 जून 1982 को प्रातः 8:30 बजे स्वर्गाश्रम में गीता भवन नंबर 3 के बगीचे में दिया गया। राम राम राम।
परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरुष्टात्
पूर्णेन्दु सुंदरं भादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ति गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु कमले
अध्याय हुए अध्याय के अंत में भगवान ने कहा कि शास्त्र विधि का त्याग करके और अपने मनमाने ढंग से जो आचरण करता है उनको सिद्धि और सुख और परम गति नहीं मिलते। तो मनमाने ढंग से आचरण करने का अर्थ हुआ कि शुभ काम करते हैं। क्यों कि न से सिद्धि मापनोति न सुखम न परांगति। जिन कर्मों का फल सिद्धि और सुख और परम गति होती है ऐसे भी कर्म हैं तब इनका निषेध किया जाता है। तो उसके भी कर्म निष्फल हो जाते हैं ये बात कही। तो भी मनमाने ढंग से करने पर निष्फल होते हैं। इस पर अर्जुन के ये प्रश्न उठ गया कि शास्त्र की विधि को जानने वाले तो बहुत कम आदमी हैं और श्रद्धा को लेकर बेचारे पूजन करते हैं, स्मरण जप करते हैं, किसी देवता का पूजन करते हैं। जहां लग जाए पीपल में जल डाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ आदि आदि अच्छे पारमार्थिक काम छोटे बड़े करते हैं, जब ध्यान आदि भी करते हैं। तो उनको उसका पता नहीं है तो मनमाने ढंग से ही करते हैं। तो महाराज भी मनमाने ढंग का विचार भी अपनी मर्जी मुताबिक करें ऐसा नहीं है, किंतु उनको ज्ञान नहीं है। ये जानने के लिए अर्जुन कहते हैं कि ये शास्त्र विधि को सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। शास्त्र विधि का तो त्याग कर दिया पर श्रद्धयान्विता यजन्ते श्रद्धा सहित है और यजन करते हैं पूजन करते हैं। वहां तो कामकारता और वर्तते है दो बात है, कामकारता और बर्ताव करते हैं, ये श्रद्धा युक्त है पूजन करते हैं। शास्त्रीय विधि का त्याग इनके भी उनके भी है तो इनकी निष्ठा कौन सी होगी। मानो श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं इसको लेकर निष्ठा होगी, शास्त्र विधि को त्याग करके निष्ठा होगी तो शास्त्र विधि का त्याग करने से तो निष्ठा उनकी पारमार्थिक होनी नहीं चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं इस वास्ते उनकी पारमार्थिक होनी चाहिए। तो दोनों बातें मिल गई तो उसकी निष्ठा कौन सी होती है। मरम पूछने का मर्म ये है कि वे देवी संपत्ति वाले हैं आसुसंति संपत्ति वाले हैं। सत्वम आहो रजस्तम। तो भगवान उत्तर देते हैं कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके यह शास्त्र विधि में सृज्य हाँ त्रिविधा भवती वो ठीक बोले त्रिविधा भवती श्रद्धा देहनांशा स्वभावजा। अब शास्त्र विधि का त्याग कर दे तो बाकी क्या रहा भाई। तो स्वभाव ही रहा, शास्त्र विधि को चले दो तो ऐसे कहा ऐसे करो ऐसे मत करो ऐसे रहा और अपने मनमाने भाव से ही करता है, बड़ी पूज्य भावना को लेकर करता है तो भी प्रधान तो अपना अंतकरण ही रहा। तो त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनांशा स्वभावजा। सा स्वभावजा श्रद्धा वो सा स्वभाव से पैदा होने वाली श्रद्धा तीन तरह की होती है, सात्विक राजसिक और तामसिक। क्योंकि सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत, सबकी अंतकरण के रूप श्रद्धा होती है। तो श्रद्धामयो अयम पुरुष, ये पुरुष श्रद्धा प्रधानी है। जैसी उसकी श्रद्धा है वैसी उसकी स्थिति है, आज चाहे वैसी दिखे चाहे न दिखे। यो ये श्रद्धा सैव स, जय श्रद्धा उसी की निष्ठा है। सात्विक श्रद्धा है तो सात्विक निष्ठा है, राजसी श्रद्धा तो राजसी निष्ठा है, तामसी श्रद्धा है तामसी निष्ठा है। कि महाराज की पहचान कैसे हो, तो पहचान तुमने कहा यजंते श्रद्धान्विता, तो श्रद्धा के तीन भेद बताए, तो अब यजंते से पहचान बताएंगे उसकी। तो यजंते सात्विक आदेवान, सात्विक पुरुष देवताओं का यजन करते हैं, जो शास्त्र में प्रसाद इत्यान वसुंद रुद्रान अश्विन ऐसे देवता जो शास्त्र देवता उनकी उपासना करते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसा, यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं धनादि संपत्ति के लिए, राजसी पुरुष। और तामसी पुरुष है प्रेतान भूतगणास्तान्य, जो मर गए हैं भूत प्रेत हो गए हैं उनका पूजन करते हैं तामसी पुरुष। तो यजन करने में यजन का विषय क्या, ये पूज्य का विषय होता है, पूजन पूज्य होते हैं उनके, इस तरह से तीनों की परीक्षा होती है। और शास्त्र विधि का त्याग करके और उल्टा करते हैं आचरण वे, उनका दोष लोगों में वर्णन किया कि ये शास्त्र विधि से, ये शास्त्र विधि कर सुने अशास्त्र वेत घोरम तप्यंते तपोजना, अशास्त्र वेत, अशास्त्र वेत ने शास्त्र निषिद्ध, जिसमें शास्त्र ने आज्ञा नहीं दी, अशास्त्र वेत घोरम तप्यंते तपोजना, दम्भा अहंकार संयोगता कामराग बलान्विता कर्ष्यंत शरीर स्तम भूतग्राम चेत मानसिव अंत शरीर स्तम तान विद्धि आसुर निश्चयान भी आसुर निश्चय वाले हैं। क्योंकि पहले से शास्त्र का विद्या त्याग कर दिया और घोर तप करते हैं, भूखा मरे तो भूखा ही मरे, कई दिन घाम में तपे तो घाम में ही तपे, शीत में तो शीत में ही तपे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं। जैसे वानप्रस्थ के लिए शीत घाम आदि सहने की आज्ञा दी है तो वो तप ऐसा घोर तप नहीं होता, घोर जो मन बाने से ऐसे तप है ऊंधाई लटके और शूला परिस हो जाए, किसी तरह से जो शास्त्र की आज्ञा नहीं ऐसा करते हैं तप। और दम्भा अहंकार संयोगता दिखावटी पर विशेष होता है अभिमान विशेष, हम कितना कष्ट सह लेते हैं और तुम क्या कष्ट सहते हो, उसे हम बड़े हैं ऐसा ऐसा कष्ट सह लेते हैं। और ये शरीर में रहने वाले पृथ्वी चलते वायु आकाश का जो शरीर बना है इसको भी कृष्ण करते हैं, और मानसिक अंत शरीर भीतर में मैं विराज हूँ मेरे को भी कृष्ण करते हैं, मेरे को भी दुख देते हैं। तो इस जीवात्मा स्वयं को जो बिना विधि के दुख देना भी परमात्मा को दुख देना है, परमात्मा की आज्ञा भंग करना ये भगवान को दुख देना, ऐसे जो पुरुष है दुनिया के दुख के लिए आसुर निश्चय वाले हैं। ये दो श्लोक इधर आ गए। अब ये पहचान बता दी, तो यजन के द्वारा पहचान बताई, तो पूजन कोई करता है कोई पूजन करते ही नहीं उनका क्या पता लगेगा। भगवान बड़ी एक मार्मिक बात कहते हैं, आहारस्तो भी सर्व क्षेत्र भूति प्रिय, भाई पूजन यजन नहीं करता भोजन तो करता है ना, हाँ तो भोजन भी तीन तरह का प्यारा होता है। आहारस्तो भी सर्व क्षेत्र भूति प्रिय, वो प्रियता है ना उसे पहचान हो जाएगी। ऐसे यज्ञ तपस्था था दानम यजंते कहा, तो यज्ञ दान तप, ये यजंते पद गीता का जो यज्ञ शब्द है उसके अंतर्गत यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने कर्म करते भी कर्म तक यज्ञ शब्द के अंतर्गत होते हैं। तो मूल में यजंते आया इस वास्ते यज्ञ तपस तथा दानम तेषाम भेद में मम सुनो, ये तीन तीन तरह होते हैं मेरे से सुनो, ऐसे कह करके आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्नेहधा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया, ये दस बात बताई सात्विक आहार में। आयु हो उम्र बढ़ाने वाला, सत्व सतोगुण बढ़ाने वाला, आयु सत्व बल शरीर में है सात्विक बल बढ़ाने वाला, आरोग्य निरोगता बढ़ाने वाला और सुख बढ़ाने वाला और प्रसन्नता देने वाला, ये छह चीजें बनाने वाले रसिया स्निग्धा स्थिरा हृदया, चार तरह के भोजन मानो रस युक्त तो हो, जिसका पकने में भोजन बनाने में पूरा ठीक ठीक हुआ, ना कच्चा रहा है ना ज्यादा बन गया है, ऐसा जो रसिया रस युक्त पदार्थ। और स्निग्धा जिसमें घी आदि का संबंध है, स्थिरा जो बहुत देर तक भीतर में रह करके सात्विक वृत्तियों को स्थिरता रखने वाला, हृदया दिल दिमाग को तर करने वाले ऐसे भोजन सात्विक प्रिया सात्विक को प्यारे होते हैं। यहाँ आहार का प्रकरण नहीं है, आहार लेने वालों का प्रकरण है, क्योंकि उनकी निष्ठा कौन सी अर्जुन का प्रश्न है, उनकी पहचान कैसे होगी। तो भाई भोजन प्यारा कौन सा लगता है, भोजन खाते क्या है ये तो हाथ की बात नहीं, पर स्वतः रुचि है ना, उस रुचि से पहचान होती है कि ये सात्विक है, राजस है, तामस है। तो ऐसा भोजन जिनको प्यारा लगता है वे सात्विक पुरुष होते हैं। और कटु में लवणा उष्ण तीक्ष्ण कटु अम्ल खट्टा अति खट्टा अति उष्ण कटु अम्ल अति उष्ण तीक्ष्ण अत्यंत गर्म तीक्ष्ण तीखा मिर्ची आदि रूक्ष रूखा भूजा आदि और विदाई न दहाकर राई आदि जो जलाने वाले, ये राजस श्रेष्ठ, ये राजस पुरुष को प्यारे लगते हैं। और दुख और शोक और आमा ये तीन फल है इसके। चबाने आदि में मिर्ची खाने से दुख होता है, खट्टी अत्यंत खाने से दांतों को भी दुख होता है, पानी आता आँखों में, जीभ जलने जलती है, दाह होती है, ऐसे दुख और शोक चिंता आदि से पैदा होते हैं कि सात्विक वृत्ति के बिना दुखों को सहने की शक्ति नहीं होती, बस चिंता होती है। और आमय रोग पैदा होते हैं, जितने भोग बुद्धि से पदार्थों के भोगे जाए तो उसे रोग पैदा हो गए। तो ये तीन फल इसके बताए। ऐसे ही तामसी पुरुष यात यामम, जिसको याम प्राप्त हो जाए, मन पकने में सीजने में जिसका पूरा समय प्राप्त हो जाए, वो याम प्राप्त यात याम, जिसका याम चला गया मन वो प्राप्त नहीं हुआ, पूरा परिपक्व नहीं हुआ, ऐसा अधपका। गत रसम, जिसका रस खराब हो गया, विकृति आ गई फलादि में भोजन बनने के बाद, पूति और जो गंध हो जाती है स्वतः उसमें गंध पैदा की जाए, अथवा लहसुन प्याज आदि की गंध है, पूति परिवर्षितम अथवा बासी हो जाए, रात्रि निकल जाए, ऐसे साधन दाल भात रोटी आदि बासी हो जाए वो परिवर्षितम। और उच्छिष्टम, और जो दूसरा ने भोजन कर लिया और बाकी का जूठन है वो तामसी होता है। अमेध्यम, और जो अपवित्र, अपवित्र नाम नहीं लिया, अपवित्र कह दिया, अंडा है, मांस है, मछली है, मदिरा है आदि जो महान अपवित्र घृणित होते हैं, ये भोजनम तामस प्रियम, ये तामसी आदि को ये भोजन प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तामस प्रियम तो प्रिय शब्द दिया, तो पहले त्रिविध भूति प्रिय एक का और तीन में प्रिय प्रिय और इष्ट शब्द का, तो ये प्यारा लगता है भोजन, इससे उनके सात्विक राज तामस की पहचान होती है। दूसरी एक बात ध्यान देने की, सात्विक भोजन का फल पहले बताया, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, और राजस का पीछे बताया कि दुख शोकामय प्रदा, और तामस का फल बताया ही नहीं। मानो सात्विक पुरुष है वो परिणाम की तरफ विचार करके फिर कार्य में प्रवृत्त होते हैं, और राजसी है प्रवृत्त हो जाते हैं फिर फल भोगते हैं, और तामसी का तो क्या कहा जाए, मूढ़ता है, महान पशु की तरह ही होते हैं। ऐसा तीन प्रकार का भोजन बताया। अब यज्ञ तपस तथा दानम, इसका भेद बताते हैं। तो यज्ञ भी तीन तरह का होता है, अफलाकांक्षी वीर यज्ञ विदृष्ट हो यही जते, फल की इच्छा का त्याग करे। ये फल की इच्छा है ना, राग है, ये रजोगुण का स्वरूप है, खास रजो रागात्मकम। तो अफलाकांक्षी वीर यज्ञ विदृष्ट हो, और शास्त्र की विधि के अनुसार किया जाए सांगो, यष्ट कांक्षी वीर यज्ञ विदृष्ट हो यही जते, यष्टव्यम एव इति मनस समाधाय, कि फल की इच्छा नहीं फिर शास्त्र की विधि अनुसार करे ही क्यों, प्रयोजन क्या है। मतलब कहते प्रयोजन यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय, कर्तव्य है हमारा, मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जिस वर्ण और आश्रम में पैदा हुए हो, जहाँ जो शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ आदि होते हैं वे अवश्य कर्तव्य होते हैं, करना चाहिए, बस यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय। एव और इति दो पद दे दिए, अव्यय दो दिए, भगवान व्यास महाराज की बाणी में अव्यय ज्यादा होता है, जो खर्चा न हो और अर्थ विशेष आ जाए, तो इति है ये। मानो केवल इतना ही, इसके सिवाय और कुछ नहीं। अष्टभ्यम एव इति मन समाधाय, मन का समाधान के भैया कर्तव्य है, ये तो करना होगा। फल की इच्छा नहीं रखना है, आलस्य में प्रमाद में समय नहीं बर्बाद करना, ये तो करना ही। अरे अभिसंधा है तो फलम, और फल की अभिसंधि कर किया जाए, और दम्भार्थम और दिखावट बने किया जाए। लोग देखे बड़ा यज्ञ सार यज्ञ करने वाला है, याज्ञिक है, सब समझे। इज्जत वर्त श्रेष्ठ यज्ञ विधि राजस्व, ऐसे जो किया जाए वो भैया राजस्व यज्ञ होता है। और विधि ही नम्र अश्रेष्ठानम, विधि कोई है ही नहीं, मनमाने जो विधि है। और जिसमें अन्न का दान नहीं है, मंत्र ही न मंत्रों का जिसमें प्रयोग नहीं, अदक्षिणम जिसमें दक्षिणा ही नहीं, और श्रद्धा भी रहतम उनमें श्रद्धा प्रेम है ही नहीं, शास्त्र की क्रिया की ऐसी कोई श्रद्धा नहीं। तामस संप्रभु तामस यज्ञ, यज्ञ हो गया। अब तप का वर्णन आता है, तो तप शरीर से होता है, वाणी से होता है और मन से होता है। तो तीन तरह का तप पहले बताते हैं, इसके बाद सात्विक राजस और तामस ऐसे बताएंगे। तो तप के छष्ट हो गए, यज्ञ के तीन हुए, तप के छह हुए, जिसमें शारीरिक तप बताया, वाणी का तप बताया, मन का तप बताया। तपस्या में कष्ट सहना होता है, तो शास्त्र की विधि के बिना मन माने ढंग से कष्ट सहने को तो असुर निश्चय बता दिया, ये तो असुर है। क्योंकि 16वें अध्याय के अंत में आता है, तो 16वें अध्याय में देवी रोहासी दो संपत्ति का वर्णन आया। अर्जुन ने भी दो ही बात पूछी, सत्वम आहो रजस्तमा, वो सात्विक है राजसी तामसी है। मानो सात्विक है तो देवी संपत्ति है, नहीं तो आसुरी संपत्ति है, तो कौन सा है? तो आसुरी संपत्ति कहने के आवश्यक, दो आसुरी संपत्ति वाले कह दिए। तो लोगों के मन में जची हुई है कि यही तप होता है, जिसमें शरीर तपाया जाए, दुख दिया जाए, कष्ट दिया जाए, तप होता है। तो भगवान कहते हैं हमारे यहाँ कष्ट देने की बात नहीं है, यहाँ तो तप है, वो बड़ा संयम है, उसमें तप है। अपने धर्म के पालन करने के करने से जो आकर कष्ट आ जाए उसको सहना, तो वो शारीरिक और वाचनिक और मानसिक ऐसे तीन तरह का होता है। तो शारीरिक तप क्या है, ध्यान देकर सुना आप लोग, बड़ी काम की चीज है, बड़ी अपने लाने की, आचरण में लाने की है, बड़ी सुगम है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये पांच बात है शारीरिक तप की। पहले पूजन है, उसमें चार बात बताई, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं का पूजन। तो ये जनते सात्विक का देवान, वही देवता लेना जो शास्त्र की आज्ञा है, उनका पूजन। परमात्मा का पूजन भी आ जाएगा, देवताओं का पूजन खास करके। तो देव और द्विज, द्विज करके यहाँ लेना ब्राह्मण, ऐसे द्विज शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों के लिए लागू होता है। क्योंकि ये द्विजन्मा है, एक तो माता पिता से जन्म होता है, और फिर संस्कार करने से गुरु और गायत्री से जन्म होता है, दूसरा जन्म द्विजत हो जाता है। तो तीनों ही वर्ण कहलाते हैं, पर तो यहाँ द्विज है वो पूजन में लिया, इनके पूजन करना, तो यहाँ द्विज करके ब्राह्मण लेना चाहिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, और गुरु करके माता पिता आचार्य, जिनसे हमारे को विद्या मिली है, बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, हमारे को जो पारमार्थिक और नया ज्ञान मिला है। आचार्य माता पिता गुरुजन है, देव द्विज गुरु, तो गुरु है वे माता पिता जिनसे शरीर मिला है, और गुरु जो हमारे वर्ण में आश्रम में हमारे से बड़े हैं, वे सब गुरु शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। देव द्विज गुरु, और गुरु आचार्य का भी आ जाता है, जैसे विद्यालय है सांसारिक अथवा पारमार्थिक, जिससे हमने प्रकाश प्राप्त किया है, गुकारस अंधकारस और रुकारस का निरोध कृत, जो अंधकार को दूर कर दे वो गुरु होते हैं। तो सांसारिक विद्या में हम अंधे होते हैं, उसमें सिखा देते हैं तो प्रकाश दे देते हैं, ऐसे धार्मिक और पारमार्थिक बातों में भी जो हमारे को प्रकाश दे देते हैं, हम समझने लग जाते हैं वे गुरु हैं। इनका पूजन प्राज्ञ पूजन कहा, प्राज्ञ कर लेना चाहिए, ज्ञानी तत्वज्ञ जीवन मुक्त भगवत प्राप्त पुरुष। ते अलग क्यों लिया, कि वो देवताओं में न हो, वो ब्राह्मण वर्ण का भी न हो, और द्विज देव द्विज गुरु, और गुरु भी नहीं वर्ण में आश्रम में कुटुंब में किसी तरह से वो गुरु भी नहीं है, परंतु तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष है, तो वो भी इनके साथ है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इनका पूजन करना, पूजन का अर्थ आदर करना, सत्कार करना, और जहाँ जैसी विधि हो पुष्प चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, आरती करना आदि आदि जो पूजन की विधि है, इस तरह से इनका पूजन करना, वो यथा योग्य यथा समय, जैसा अवसर हो परिस्थिति हो समय हो उसके अनुसार इनका आदर सत्कार करना पूजनम। और ये शरीर से होता है, इस बात से शारीरिक तब बताया। एक ऐसे शौचम, शरीर को शुद्ध रखना मृतिका और जल से, हाथ और साफ करना है, कपड़ा साफ करना है, तो शुद्धि होनी चाहिए। वो साबुन अशुद्ध होता है ना, वो लगाने से अशुद्धि आ जाती है, कपड़े और शरीर ये सब अपवित्र होता है, चर्बी और लग जाने से मुर्दे से अपवित्र होते हैं। इस वास्ते शुद्धि पवित्रता ये रहे, जिससे स्वच्छ अंतःकरण निर्मल होता है। शुद्धि का एक बड़ा असर स्वतः होता है, आप भोजन बनाओ शुद्ध कपड़े पहन करके, गोबर का चौका लगाकर शुद्ध करके पवित्रता से बनाओ, चित्त में स्वच्छता आवेगी, और वैसे ही भगवान के भोग लगाकर प्रेम पूर्वक आप पाओगे आदर से, तो इसमें स्वतः स्वच्छता आवेगी स्वाभाविक ही। तो शौचम आर्जम और सरलता हो, टेढ़ा पड़ना हो, चाल में देखने करने में सीधा बना हो। ब्रह्मचर्यम मानो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए तो ब्रह्मचर्य है ही अखंड, गृहस्थ का भी केवल ऋतुगामी हो संतान के लिए, वो भी ब्रह्मचारी के समान ही माना। अहिंसा च हिंसा न करना, किसी की हत्या न करना, मारपीट कर देना है मार देना है अगर ये नहीं करना। शारीरम तप उचित, शारीरिक तप है, तो कितनी सरल बात है, ना शीत सहना है, ना घाम सहना है, ना वर्षा सहना है, ऐसी बात है। पांच तप है ही, देवद्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उचित। ऐसे वाणी का तप बताते हैं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम् तु उच्यते। वाणी का तप क्या है, कि वाक्य बोलना है ना, वाणी से वाक्य बोले, व्यवहार में बोलने में जो वचन आते हैं इसको वाक्य कहते हैं। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जिसका वाक्य वाक्य है वचन है, वो उद्वेग करने वाला ना हो, दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों के हृदय में हलचल पैदा करने वाला ना हो, तो ऐसा अनुद्वेग कर्म वाक्यम। और फिर सत्यम रहितम चाहे, वो सत्य होना चाहिए, जैसा देखा है जैसा सुना है जैसा शास्त्रों में पढ़ा है जैसा अपने मन में निश्चय हुआ है, वैसा का वैसा अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग कर दूसरों के हित के लिए प्रिय शब्दों में कह देना है, वो सत्य होता है। और सत्य के साथ प्रिय भी होना चाहिए, इस बात सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सास बात कहनी और प्यारी भी कहनी। लोग कहते सा हम तो सच्ची बात कहते हैं, चित्त शुभ जैसी बात कह दे तो वो सत्य सत्य नहीं, प्रियता होनी चाहिए साथ में, भाव उनका हित का कार्य होना चाहिए। सत्यम प्रिय हितंजय, तो हित का वचन होता है, हित की बात होती है, तो वो परिणाम में उसको सुख देने वाली होती है, समझेगा तो वो प्रसन्न होगा, सत्यम प्रिय हितम हितकारी, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए कहा, सदाचार के लिए कहा जाए, प्यार से स्नेह से कहा जाए तो हितकारक होगी, सच्ची बात है, उनके कर्तव्य है ये बात, ऐसे किया जाए। अरुद्वे कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम स्वाध्यायाभ्यसनम सेव वाङ्मयम तप उच्यते। और जो शास्त्रों का स्वाध्याय, नित्य कर्म करना है, संध्या गायत्री आदि करना है, और पारमार्थिक पुस्तकों का पाठ करना है, गहरे उतर करके उनके भावों को समझना है, और उससे भी बढ़कर अपना स्वाध्याय स्वस्य अध्ययनम अपना अध्याय अध्ययन करना, मन मेरी वृत्तियाँ कैसी हो रही है, परमात्मा में लग रही है नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही है, क्या बाधा हो रही है, ऐसा विचार कर शास्त्रों का पठन पाठन किया जाए, मिलान किया जाए तो बड़ा लाभ होता है। एकांत में बैठ करके और ऐसे पारमार्थिक पुस्तक है उनको पढ़े, जिसकी जैसी साधना और जिस पर जिसकी श्रद्धा, उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते खूब तल्लीन हो जाए, तब उसी में ध्यान लगा दे, जप कर दे, कीर्तन करे, उसी में एकदम स्थिर हो जाए। कुछ देर के बाद फिर मन में विक्षेप हो जाए, संसारिक बात याद आवे, तो उस पुस्तक को पीछे से फिर पढ़ते 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 वहाँ आते ही मन लग गया तो वहीं छोड़ने, पुस्तक को पूरा करने का तात्पर्य नहीं, पुस्तक तो केवल परमात्मा में मन लगाने के लिए साधन मात्र है। ऐसे स्तोत्र पढ़ो, भगवान की लीला पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, ऐसे पढ़ने से वो मन लग जाए, ऐसे अभ्यास किया जाए तो साधक की बहुत विशेष उन्नति होती है। साधन करने वाले साधन भी करे और सत्संग भी करे और ऐसे पुस्तकें भी पढ़े और उन पर विचार भी करे और विचार करके अपने आचरण में लावे, ऐसे साथ साथ दोनों करे तो बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। नहीं तो सुन लिया छोड़ दिया, सुन लिया छोड़ दिया, तो उसे जल्दी प्रत्यक्ष में सुधार नहीं दिखता। समय पाकर जो जितना किया है वो तो प्रकट होगा, पर बहुत कम है, न जाने किस जन्म में कब होगा। ऐसे तत्परता से अगर अभ्यास स्वाध्यायाभ्यसनम से अभ्यास करे, स्वाध्याय करे और उनका अभ्यास करे, नाम जप करे, पुस्तकों का अध्ययन करे, ये वाङ्मय तप वाणी का होता है। इसमें अनुद्वे कर्म आ गया, अगर ये प्रिय शब्द आया तो प्रिय होने से अनुद्वे कर आप शाप हो जाएगा, सत्यम प्रिय हितंजयत, तो प्रिय कह देने के बाद अनुद्वे कर्म वाक्यों कहने की आवश्यकता नहीं, तो प्यारा लगेगा तो उद्वेग कैसे कर रहा, उद्वेग पैदा होगा तो प्रिय कैसे लगा, तो ये दोनों शब्द कैसे आए हैं। तो अनुद्वेग कर्म का तात्पर्य है कि वो वचन उद्वेग करने वाला न हो। अभी जिसको कहते हैं उसने तो सुन लिया, प्यार पूर्व भी सुन लिया आदर से ही, पर दूसरे किसी के अवगुण को प्रकट कर दिया, किसी की निंदा कर दी, तो उसको वो उद्वेग कर हो जाएगा। जब कहीं परंपरा से उसके बाद बात पहुंचेगी तो उद्वेग करने वाला, इस वास्ते अनुद्वेग कर्म वाक्यम, वाक्य उद्वेग करने वाला ना हो, न सुनने वाले को न औरों को ही, और प्रिय है सुनने वालों को अच्छा लगे, ऐसे कहना। इससे भी बढ़ करके हित की बात है, हित की बात थोड़ी कड़वी भी लग जाए तो वो दोष की बात नहीं है, उनके हित की हो, निंदा आदि की नहीं। उनके कोई जैसे शिष्य है अथवा पुत्र है, स्त्री है, आपस में ऐसे स्नेह रखने वाले नौकर आदि है, उनके हित के लिए बात कही जाए और किसी ऐसे में कड़वी भी लगे तो वो दोष की बात नहीं है। अरे वो कड़वी लगने पर भी हित का भाव रहने से उनको बुरी नहीं लगेगी। छोटे छोटे छोरों में ये देखने में आती है, जो पढ़ते हैं और गलती करते हैं तो मास्टर मार देता है, तो आंसू आ जाते हैं, शिकायत नहीं करते। छोरे खेल खेल में कोई मार दे तो बड़ा जोर से रोता है, जा शिकायत करके मेरे को मारा, और मारा तो थोड़ा सा, उसे तो ज़्यादा मारा है वहाँ गुरु जी ने, परंतु वो समझता है, उस पर असर पड़ता है कि ये मेरे हित के लिए करते हैं। छोरा हित के लिए थोड़ी मारता है, वो तो द्वेष से मारता है। तो हितेशिता है ये सबसे बढ़िया चीज है, सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवंती मामे, व भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे हितकार को वचन हो, उसमें तो उसे कुछ थोड़े बहुत दोष भी आ जाए, असत्य नहीं होना चाहिए, और दोष आ जाए तो थोड़ा दोष वो क्षम्य हो जाएगा। और सभी हो तो फिर सोना और सुगंध बढ़िया बात है। ये वाणी का तप है, ऐसे संयम से वाणी बोलना, ये वाणी का तप हो गया। क्या करते उठाना, अगर ये मौन मौन मात्म बताते हैं मन का तप, मन प्रसाद सौम्य तुम मौन मात्म निग्रह भाव संशुद्धि रीति तप्त हो मानस मुच्यते। वाणी का तप बता के मन के तप बताते हैं, तो पहला ही पहला मन का तप क्या है कि मन प्रसाद, मन को हरदम प्रसन्न रखना। देखो कैसी मौजूदी बात, तपस्या है, कष्ट सहने से आधिक ताप सहने से तपस्या होती है, चित्त को हरदम प्रसन्न नमस्कार रख। तो हरदम प्रसन्न किसका रहता है कि जिसमें दूसरे के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी का अहित नहीं चाहता है, सबका हित चाहता है और परमार्थी पारमार्थिक काम में लगा हुआ होता है, तो उसके चित्त में प्रसन्नता रहती है। मन में चाहना होती है, कामना होती है, अपना मतलब सिद्ध करने की बात होती है, तो लगती तो अच्छी है, चित्त प्रसन्न नहीं रहता उसमें। स्वार्थ सिद्ध होने पर भी हलचल होती है, स्वार्थ नहीं सिद्ध नहीं होता और हलचल ज्यादा होती है। मन प्रसाद स्वाभाविक स्वच्छ मन हो, निर्मल मन जन सोमो ही पावा। मन प्रसाद सौम्यतम, और मन में सौम्य भाव हो, क्रूर भाव न हो, किसी को भी कष्ट देने का भाव ही नहीं है मन में, किसी का अहित करने का भाव ही नहीं है, तो सौम्य भाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही रहता रहे, किसी के भी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ऐसे सौम्य भाव मन में। मन प्रसाद सौम्य मौन, ये मौन सब देना चाहिए वाणी के तप में। यहाँ मौन दिया है मन के तप में, तो यहाँ गीता जा मौन है, ये वाणी का संयम नहीं है। जहाँ अर्जुन ने किम प्रभाषित पूछा है शिष्य के लक्षणों में, वहाँ भी राग द्वेष रहित स्थित धीर मुनि रुच्यते, इनसे रहित और स्थिर बुद्धि है जिसकी, उसको मौन कहा है। और यहाँ भी मन की मन प्रसाद है सौम्य तो मौनम, तो मननशीलता हो, परमात्म तत्व का मनन करे, शास्त्रों का करे, अध्ययन करे, आत्म विनिग्रह मन को अपने वश में रखे, मन के वश में न हो जाए। मन के कहने में चलने से ही ये शत्रु की तरह है, के शत्रु संत निजेन्द्रियाणी, शत्रु कौन है, अपनी इंद्रियां अपना मन, कहते मित्र कौन है, कि जितानियानी, इनको जीत लो तो ये अपने मित्र हो जाते हैं। मोटरसाइकिल आदि चढ़ते हैं और हम चलाते हैं, जो ही चले तो हमारे गंतव्य स्थान में पहुंचा दें, और चला में इधर वो चल रहे उधर और ही तरफ, तो महाराज न जाने किस पेड़ से पत्थर से टकराएंगे, किस खाड़े में डालेंगे। ऐसे अपने मन बुद्धि इंद्रिया है, ये अपने वश में होती है, तो ये अपने ठीक परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, और इनके वश में आप हो जाते हो तो महाराज फिर तो दूध सही करेंगे। और भाव संशुद्धि, नियत शुद्ध रखनी चाहिए सदा, नियत बिगड़ जाती है तो आदमी का जीवन भ्रष्ट हो जाता है। कभी भी नियत को खराब न करे, भाव अपना जो सिद्धांत है, नियत है, सबके हित का ही नियत रहे, किसी के अहित करने का, लोभ आदि कर क्रोध आदि के वश में होकर, काम आदि के वश में होकर अपनी नियत खराब न करे, भावों का शुद्ध बना रहे। भाव की बड़ी भारी कीमत है, संसार में व्यापार में भाव है जो बाजार के अधीन होता है, और ये भाव अपने अधीन होता है। सद शुद्ध भाव हो, सच्चा हित का सत्य भाव, और सद्भाव है दुर्भाव न हो, भाव संशुद्धि, शुद्धि के साथ में सम लगाया तो भावों की महान पवित्रता होनी चाहिए। ये तत्त तपो मानस मुच्यते, ये मन का तप कहा गया। तो ये 15 होते हैं, 16 हो जाते हैं, स्वाध्याय और अभ्यसन दो कर देते हैं तो ये 16 हो जाती है बातें। तो शरीर वाणी और मन का ऐसा संयम रख करके चलना है, ये तपस्या है। तो सत्संग भजन ध्यान करने वाले साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक ये है। अब ये सात्विक तप बताते हैं कि वो सात्विक श्रद्धया परिया तप्तम, परम श्रद्धा से तपा जाए, शास्त्र की आज्ञा है, भगवान के वचन है, हमें अपना कल्याण करना है और इनसे हमारा कल्याण होगा, ऐसा पूज्य भाव सहित अपनी श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो श्रद्धया परे आतम। परा वो है कि प्रत्यक्ष से भी बढ़कर दिखे। शास्त्र की बात, प्रत्यक्ष में तो भूल हो सकती है, आँख का दोष हो सकता है, बहम पड़ सकता है, पर शास्त्र की तो संतों की, भगवान की, अनुभव की बात है, इस वास्ते उसमें कोई फर्क पड़े नहीं। तो प्रत्यक्ष से भी बढ़कर श्रद्धया पर्यातप्तम, परम श्रद्धा से ये यत्र विधम शरीर वाणी मन का तप तपा जाए। अबला कांक्ष भी योग्य और फल की इच्छा न हो, फले शक तो नहीं बदलते, ये जो फल ऐसा मिले ऐसा मिले, प्रायः लोग फल की तरफ ही दृष्टि रखते हैं, ऐसा हमने क्या क्या फायदा, हमें क्या मिला, ऐसा कि हमें क्या मिला, सत्संग किया तुम्हें क्या मिला, समय इतना लग गया क्या मिला, तो फले शक तो नहीं बदलते। फल क्या है, फल तो हमारा समय ऊंचे से ऊंचे अच्छे से अच्छे काम में लग गया, हमारी क्रियाएं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हो गई, इससे बढ़कर और फल क्या होता है, भगवान में मन लग गया ना, अच्छे आचरणों में मन लग गया, जीवन हमारा शुद्ध हो गया, इससे बढ़कर और फल क्या होगा। तो और फल ढूंढते हैं तो वे फल संतो निबद्धते, यही जाएगा हमारा जीवन स्वच्छ निर्मल हो रहा है, भगवान की तरफ चल रहा है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरेहि अफलाकांक्षिभिः युक्तैः, और सावधानी रहे हर समय ही सावधान। ये सावधानी साधना है, लोग घंटा दो घंटा तीन घंटा भजन ध्यान करते हैं, चाहे आठ दस घंटा ही करे, पर भजन इतने में समाप्त नहीं, आठ ही पर हम साधक हैं, साधन की तरफ चलना है, साधन विरुद्ध काम कोई भी नहीं करना है, हर समय सावधानी से अपना जीवन रखा जाए तो बड़ी पवित्रता, जल्दी पवित्रता होती, और नहीं तो ये माई है ना, गेहूं को साफ करे तो वो छाल से ऐसे ऐसे करके फिर थाली में लेकर देखती, गेहूं के समान दाना होते हैं वो नहीं निकलते, दूसरे तो छाल से निकल जाए, तो उनसे ऐसे निकल जाए, वो निकाल निकाल कर